From the conference.
Salt Lake City ki Temple Square ke sammelan kendr se hai. Sorry, shaniwar sham ki sabha hai. Yeshu Masih ka girja ghar antim dino ke santo ka 186th varshik sama maha sammelan hai, jiske vasan karta girja ghar ki maha adhikariyon aur maha pad adhikariyon mein se chune gaye hain. Is sabha ka sangeet Utah Provo ke pracharak शिक्षण केंद्र से प्रचारण के गायक मंडली द्वारा प्रदान किया जाएगा. बर्नवेल डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा इस प्रचारण के जनता सेवा के रूप में पूर्ति किया गया है. इस कार्यक्रम को कोई भी पुनर्पादन अभिलेखन प्रतिलेखन या अन्य इस्तेमाल बिना लिखित अनुमति की मना है. प्रेसिडेंट डीटर एफ उगडोव गिरजाघर के प्रथम अध्यक्षता के दूसरे सलाहकार इस सभा का संचालन करेंगे.
Dear brothers and sisters,
भाइयो, प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे दोस्तों, हम यीशु मसीह के गिरजाघर अंतिम दिनों के संतों के 186th आद्यवार्षिक महासम्मेलन के शनिवार शाम की सभा में तुम्हारा स्वागत करते हैं. प्रधान थॉमस मॉन्सन, जो इस सम्मेलन के अध्यक्ष कर रहे हैं, ने मुझसे कहा कि मैं इस सभा का संचालन करूं. हम उन सभी का स्वागत करते हैं जो यहाँ उपस्थित है या जो अपने केंद्रों में दूसरे मध्याओं से भाग ले रहे हैं. यूटा प्रोवो के प्रचार सेक्शन केंद्र के प्रचारों के कायक मंडली द्वारा इस सभा के संगीत प्रदान किया जाएगा, जिसका निर्देशन रायन एगेट और एल्मो केक साथ होगी लिंडा मार्गेट्स और बॉनी गुडलेव ओगन पर. इस सभा की शुरुआत कायक मंडली इस गाने द्वारा शुरू करेगी, जोसेफ स्मिथ फर्स्ट प्रेयर. फिर एल्डर डैनियल एल जॉनसन, जो 70 के है, के द्वारा प्रार्थना की जाएंगी. प्रथम अध्यक्षता के प्रथम सलाहकार प्रधान हेनरी बी आयरन गिरजाघर के महा अधिकारियों और क्षेत्रीय 70 के समर्थन मत को प्रस्तुत करेंगे.
Singing, music ringing through the grove.
our Heavenly Father.
हमारे स्वर्गीय पिता, हम नम्रता से अपने सर को झुकाते हैं, सर झुकाकर हम यहाँ पर आए हैं और सभी एकत्रित हैं दुनिया भर में और हमें शिक्षा मिल रहा है आपके सेवक के द्वारा. हम आभारी हैं कि हमारे मुखिया प्रधान थॉमस एस मॉन्सन जो हमारे भवशिक्ता है वो हमारे साथ है और वो हमारे देखभाल ए पिता उनके साथ हो जिन्होंने इस टॉक्स को प्रिपेयर कराया है. हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे साथ रहे जो वो हमारे लिए तैयार किया है टॉक्स में. हम प्रार्थना करते हैं कि हम सभी को आप आशीष दें ताकि जो हम सुने हम पवित्र आत्मा के द्वारा से सुने कि हमें सीख मिले कि हम जब यहाँ से जाए कि हम आशा के साथ जाए कि हम अपने आप को बदले और आपके राह पे चले. हम धन्यवाद देते हैं अपने आपके परिवार के लिए यीशु मसीह के नाम से. आमीन.
भाई और बहनों, प्रधान मॉन्सन ने मुझे वहाँ अधिकारियों और सत्रों के चित्र के रूप में तुम्हारे सामने समर्थन करने को कहा है. यह प्रस्तावित किया गया है कि हम थॉमस स्पेंसर मॉन्सन को यीशु मसीह का गिरजाघर अंतिम दिनों के संतों का के भविष्यवक्ता पैगंबर और प्रतिकर्ता और प्रधान के रूप में समर्थन करें. हेनरी बेनियन आयरिंग को प्रथम अध्यक्षता के प्रथम सलाहकार और डीटर फ्रेडरिक उगडॉफ को प्रथम अध्यक्षता के दूसरे सलाहकार के रूप में जो सहमत है वो प्रकट करें. जो असहमत है अगर कोई तो प्रकट करे. प्रस्तावित किया जाता है कि हम रसल एम नेल्सन को 12 देवदूतों को परिषद का प्रधान नियुक्त करें और उस परिषद के इन सदस्यों को रसल एम नेल्सन, डैलन एच ओक्स, एम रसल बैलर्ड, रॉबर्ट डी हेल्स, जेफरी आर हॉलैंड, डेविड ए बेना, क्विंटन एल कुक, डी टॉड क्रिस्टोफरसन, नील एल एंडरसन, रोनाल्ड ए रैसबेन, Gary E. Stevenson और Dale G. Renlon को समर्थन दें. जो सहमत है कृपया प्रकट करें. जो असहमत उसी तरह दिखलाइए. यह प्रस्तावित किया गया है कि हम 12 देवदूतों के प्रथम अध्यक्षता के सलाहकारों को भविष्यवक्ता पैगंबर और प्रतिकर्ता के रूप में समर्थन करें. जो सहमत है कृपया प्रकट करें. जो असहमत है अगर कोई उसी तरह से प्रकट करे. यह प्रस्तावित किया गया है कि हम महाअधिकारियों सत्रों के एल्डर्स डेनियल एल जॉनसन, जायरो मार्जागार्डी, केंट एफ रिचर्ड्स और फ्रांसिस्को जे वेनाज को उनके महान सेवा के लिए धन्यवाद देते हुए मुक्त करें और उन्हें सेवा मुक्त स्थान प्रदान करें. एल्डर पियर जे माम के सेवा को लिख रहे हैं जो 2016 जुलाई 26 को गुजर गया था. हम बहन माम और उनके बच्चों और नाती पोतों से अपने प्रेम और हृदय से प्रकट करते हैं जो हमारे साथ भाइयों के सेवा के लिए आभार को अभिव्यक्त करने की इच्छा करते हैं. कृपया प्रकट करें. यह प्रस्तावित किया गया है कि हम इन क्षेत्रीय से एलन आर वाका को मुक्त करें जो भाई वाका के सेवा के लिए आभार को अभिव्यक्त करने की इच्छा रखते हैं. कृपया प्रकट करें. यह प्रस्तावित किया गया है कि हम इन क्षेत्रीय सत्रों को समर्थन करें. भानु के हिरंदानी और संदीनो रोमान जो सहमत है कृपया प्रकट करें. जो असहमत को ये करते हैं. यह प्रस्तावित किया गया है कि हम महाअधिकारियों क्षेत्रीय सत्रों और महाअधिकारों प्रधाओं के सत्र करें जैसे संगठित किया गया है. जो सब सहमत करें. जो असहमत है अगर कोई उसी तरह से प्रकट करे. प्रधान मंत्री मत को लिखा गया है हम उन्हें आमंत्रित करते हैं जो असहमत है किसी भी सभा से कि अपने स्तर के अधिकारियों से समर्थन करें। भाई और बहनों, धन्यवाद गिरजाघर के नेताओं के लिए हमेशा तुम्हारे विश्वास और प्रार्थना में।
Thank you, President Iring. Thank you, brothers and sisters.
धन्यवाद भाई और बहनों। अब गायक मंडली हमें बपतिस्म सुनाएंगे। संगीत के बाद हम 12 देवदूतों के परिषद के एल्डर्स क्विंटन एल कुक और गैरी ई स्टीवेंसन को सुनेंगे।
Eternal life,
अनंत जीवन परमेश्वर की सबसे महान तोहफा है और उनका दिया गया है जो परमेश्वर का आज्ञा को पालन करते हैं और अंत तक चलते हैं। दूसरी ओर स्वर्ग के पिता के साथ अनंत जीवन उन्हें नहीं मिलता जो यीशु की गवाही में बहादुरी और नहीं देते हैं। वहाँ के ठक्कर है कि हमारे सुरता में है जो हमारे अनंत जीवन की लक्ष्य तक में रखते हैं। कई साल पहले मेरा पिता ने रेंज वाले जायदाद की हिस्सा में जहां पर वो बड़ा हुआ एक छोटा केबिन बनाया। मैं हैरान हो गया था कि खिड़की से दृश्य थी सीधे से बिजली पुल में फोकस था जो हमारे घर से जुड़ा दूर रहा। मेरे लिए ये एक बड़ा बाधा था कि शानदार दृश्य पार। मैंने कहा, पिताजी आप क्यों उन्हें खिड़की के अपने दृश्य के सामने बिजली पोल डालना दिया? मेरे पिता एक असाधारण और शांत आदमी है जो थोड़े उत्तेजना से चला क्विंटिन। वे बिजली पोल मेरे लिए बहुत ही सुंदर चीज है। इस पूरी पहुँच फारन में फिर उसने दलील दिया, जब मैं उस पोल को देखता हूँ मुझे महसूस होता है कि जब मैं جہاں پر بڑا ہوا مجھے کنٹینر سے باہر ہوئے پانی جھرنا سے گھر تک کھانا پکانے کے لیے نہیں لے جانا پڑے گا، ہاتھوں کو دھونے کے لیے یہ میرے دید کے پاس دوسرا ہی انوستھتی تھی بجلی پول پر میرے ملن میں۔ ان کے لیے وہ پول ایک سدھار جیون کے پرتیک کرتا ہے، مگر میرے لیے وہ ایک ٹھوکر ہے، ایک سندر درشیہ ہے۔ میرے پتا بجلی روشنی کو آدرش کرتا ہے، وہ صفائی کو کسی سندر درشیہ کے ملان میں۔ مجھے ترنت ہی محسوس ہوا کہ جو پول میں میرے لیے ایک ٹھوکر تھا، وہ میرے پتا کے لیے ہی مہان ویکتک پرتیکتی کا مطلب تھا۔ ہم پتا اور پتر کے ہماری گواہی سے آشنگت اور ٹھوکرے سے جٹل ہو گئے ہیں۔ ہم اس جل میں گرواہت نہیں ہو سکتے۔ ان میں سے ہماری گواہی ہے کہ ہمیشہ پوتر رہنا اور سدو رہنا، جیسا میرا پتا کے سدا پرتکپاش کی بجلی پول پر اس رینج کو تھا۔ وہ پر کون کی اس ٹھوکر ہے کہ ہمارے پوتر اور سودا گواہی پتا اور پتر کی اشاکانت اور جٹل کرتا ہے، اور ہم کو اس گواہی سے بہت دور ہونے سے روکتے ہیں۔ دیودوت پول یسوع مسیح کی ایک نشاندہ گواہی تھا کہ ادھارکرتا کے ساتھ چمتکاری اور جیون بڑھنے والا انوبھو سے ہوا تھا۔ پول کی انوکھا پچھلا جیون کے ان کو تیار کیا کہ ان لوگوں کے کہنے جو کئی سنسکرتی ہے۔ اس نے تھیسلونینس کے ساتھ کی صدا اور سچائی سے فلپینس کی دیالو اور کرپالو اور پریم بھاؤ کیا۔ شروع میں اس نے ادھک بھودک اور پرشکرت یوگیوں کے لیے مشکل پایا، اور میری وچن اور میرے پرچار میں گیان کی لبھاؤنے والی باتیں نہیں، پرنتو آتما اور سمرتا کے دکھوا تھا۔ اس لیے تمہارے وشواس منشیہ کے گیان پر نہیں، پرنتو پرمیشور کے سمرتھ پر نربھر ہے۔ ادھکارتا اور اس کے مشن کی شاندار لکھت کھٹوں کے کچھ دنیا بھر کا دھیان پایا ہے، جو جارج فریڈرک ہینڈل کی پردرشن سے مسایا ادھارکرتا کے بارے میں گہرا سدھانت بتاتا ہے۔ تیسرے بھاگ میں ترنت ہی ہیلویا کورس کے بعد کئی دھرم شاستروں کا استعمال کیا گیا ہے میں سے ہی ان ویسز کے کچھ میں پول خوبصورتی سے ادھارکرتا کے دوارا کیا کریا بات بتلاتا ہے۔ اب مسیح مردہ میں سے جی اٹھائے، جو سو گیا ہے ان میں پہلا پیال ہوا ہے، اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں اسی مسیح میں سب جی جائے گا۔ ہے مرتیو تیرا دنک کہاں رہا، ہے قبر تیرے جے کہاں رہا۔ پرنتو پرمیشور کا دھنیواد ہے جو ہمارے پربھو یسوع مسیح کے دوارا ہمیں جیوت کرتا ہے۔ واسطو میں عیسائی دھرم موجودہ سنسکرتی کے ساتھ اپنے وشواسوں میں سمجھائے کے لیے کی یعنی کی من مر رہا ہے، ایک اپنی ویش جیون کے لیے آیا تھا۔ پنستھاپت کے بھور میں کئی کم سے کم ادھارکرتا کی شکشاؤں کا پالن کرنے کا اظہار کیا۔ کئی دیشوں میں خود کو عیسائی دیشوں پر وچار کریں گے، لیکن پھر بھی وہاں ہمارے دن کے لیے اور کٹھن سمے کی بھوشوانی کی تھی۔ ہیبسی کمبل اس یگ کے ایک ملروپ 12 देवदूत था और प्रधान ब्रिंगियम के पहला सलाहकार था. उसने चेतावनी दी, समय था जब हम उस हद तक है कि यहाँ परमेश्वर के लोगों के खलीफ के खिलाफ एक दुश्मन के चेहरे के एक संत के चेहरे बताना के लिए मुश्किल हो जाएगा. हमारे दिन में कई देशों में ईसाई धर्म का प्रभाव काफी कम है. यूनाइटेड स्टेट्स को लेकर बिना धार्मिक मान्यताओं के परमेश्वर के जवादे की कोई भावना नहीं है. दुर्भाग्य से यहाँ भी गिरजाघर के कुछ सदस्य को जो अपने मूल को देते हैं और पल जिनमें कई का कारण है से प्रभावित हो जाते हैं के साथ होता है कि स्पष्ट रूप से निकृत नहीं है. हिबा सी किम्बल ने भविष्यवाणी के मिलान में एल्डर नील ए मैक्सवेल 1984 में कहा, बहुत फटकाना नियुक्ति वेकार में कमियों जिनके से पश्चाप नहीं किया जाएगा जिसके गतिति होगी ही कुछ अंत तक झेलना नहीं पाएंगे और हर मर मन लेंगे. एक और ठोकर है पाप को ना देखना चाहना उसकी असली रोशनी में. हमारे दिन की अनोखी और प्रशंसन पहलू में से एक यह है कि कई लोगों को पापी आचरण में झूठे हैं लेकिन ये पापी विचार करने के लिए मना कर दिया है. वे कोई पछतावा या इच्छा नैतिक रूप से गलत होने का रूप में उसके आचरण को स्वीकार किया है. यहाँ तक कि कुछ जो पिता और पुत्र में विश्वास दीवान गलत साथा और उनके भर्त है ये दर्जा कोरिंथियन ने लिया. कोरिंथियन जो मोमन धर्मशास्त्र में एल्मा का छोटा बेटा था वो घोर आनक कार्य में लगा था और एल्मा द्वारा सलाह दी जा रही थी. हम धन्य हैं महान भविष्यविक एल्मा जो व्यक्तिगत अनुभव था अंधेरा है अद्भुत प्रकाश लिखा. वो एल्मा 42 में सभी धर्मशास्त्र में से प्रश्चित पर सबसे शानदार सिद्धांत शामिल है. आत्मा को समझता है कि ये एक नहीं है मदद की अन्य है कि पापी दुख के एक राज्य के लिए भेजा जा चाहिए. एल्मा की शिक्षा सबसे शिक्षाप्रद है क्योंकि देखो नये उसकी सारी मांगों को पूरा करते हैं और दया भी उस पर अपना अधिकार जलाती है और इस प्रकार कोई और नहीं परंतु सच्चा पश्चाताप जाता है. उद्धारकर्ता के प्रश्चित की उल्लेखीय और दिव्य आशीर्वाद है कि पश्चाताप के माध्यम से पापी आचरण से करता जाता है. कोरिंथिया का पश्चाताप करने के बाद एल्मा ने समाप्त किया, ये बातें अब अपने मुसीबत ना दें और केवल अपने पापों को मुसीबत देना दो को मुसीबत के साथ जो अपने पश्चाताप करेंगे. निशान के पर देखना एक ठोकर है. भविष्यवक्ता जैकब ने पुराने यहूदियों को हथेली लोग कहा जो सदे को नष्पत करते हैं. भविष्यवक्ता को मार डाला और वो जाना चाहा जो उन्होंने समझ में नहीं आया. इस कारण उसे अंधेरापन निशान उसके पर देखकर अन्य उनके हर्षण पड़ा जबकि वहां निशान से परे देखा कि कई उदाहरण है. हमारे दिन में एक महत्वपूर्ण उदाहरण है उग्रवाद. महत्वपूर्ण सिद्धांत की बात पर प्रभु ने घोषणा किया, जिसने अधिक या इस भी काम कहा है वही मेरा नहीं है। जब हम किसी सिद्धांत को इस तरह मोड़, किसी जिसे हमारा जिम्मेदारी कम हो जाए, उसी तरह का किसी अवक्ष सिद्धांत के प्रति या उसकी जगह, लेकिन या गिरजा नेताओं की शिक्षाओं से अलग हो, हम निशान के पार देख रहे हैं। इसके अलावा कुछ सदस्य वजह को बड़े कर बतलाते हैं, कुछ उसमें से अच्छे हैं और से किसी मुख्य सुसमाचार सिद्धांत से ऊंचे पड़ गया है। उद्धारकर्ता और उनकी शिक्षाओं के प्रति अपने बाहर निकाल देना। हम उद्धारकर्ता के लिए हमारी भक्ति से ऊपर कुछ भी तकी करते हैं। अगर हमारे आचरण की रूप में से सिर्फ एक शिक्षा और नहीं परमेश्वर के दिव्य पुत्र को प्रत रहे, तो हम निशान के पर देख रहे हैं, यीशु मसीह की निशान है। डॉक्ट्रिन और कवनेंट 76 शिक्षा 70 ये स्पष्ट करता है कि यीशु की गवाही में बहादुर होना सरल है। आवश्यक परिवर्तन जो हमारे आवश्यक राज्य के आशीर्वाद का वारिस होगा के भेजा है और कम स्थल लिया है राज के बहादुर होने के लिए और पश्चाताप के महत्वपूर्ण से मंत्र और हमें यीशु मसीह के उद्धार पे बहुत जरूरी रहना है। अगर हम यीशु के गवाही में बहादुर रहेंगे तो हमें ठोकर की फंसने और कई अंत मान्य पोषण और महिलाओं की प्रगति में बड़ा से बचना चाहिए। हमें हमेशा उनकी सेवा में होने के लिए निश्चय करना चाहिए, जबकि ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें लोगों के बातों से बचना हो जो उद्धारकर्ता के प्रति हमारे प्रतिबंधों को कम करता है। हम अपने असली प्रकाश में पाप को देखते हैं और पश्चाताप के माध्यम से उद्धारकर्ता के प्रायश्चित स्वीकार करना चाहिए। हमें मार्ग से उद्धार देखने बंद करना चाहिए, उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता पर गौर करना चाहिए और उसके सिद्धांत को अपना चाहिए। मेरे पिता का खाना पकाने और सफाई के लिए भेजे प्रकाश और प्रचार मित्र। एक लेखक कहता है कि ठोकर को आगे बढ़ने के जरिए बनाने से महान चित्र और स्वर्ग पहुंचाना चाहिए। हमारे लिए यीशु गवाही बहुत होना बहादुर होना चाहिए, आगे बढ़ना के जरूरी है। उद्धारकर्ता के कृपा और आवश्यक राज्य है। यीशु मसीह के एक ही नाम है स्वर्ग में। मैं अपना बयान देता हूँ कि उसका राज्य में यीशु मसीह के नाम से आमीन।
In my mind, I imagine.
मेरे मन में मैं आपको इस उभरती पीढ़ी को, इस सम्मेलन को दुनिया में कई बार देखते या सुनने की कल्पना करता हूँ। मैं आप से एक सच्ची कहानी बताना चाहता हूँ, एक कहानी जो एक उदाहरण और एक बात भी हो सकता है। ये आपको दिखला सकता है कि कैसे प्रभु के करीब आप आ सकते हैं और बहकावे से दूर। ये न्यूयॉर्क में रहने वाली एक नई जीवन एक लड़की की थी जिसने 3 साल पहले अपने पिता को खो दिया था जब उसका नाव एक भरी तालाब में डूब गया था। वो उसकी माँ, बड़ा भाई और छोटी बहन के साथ एक नए शहर में चले गए थे। परिवार के वहाँ पहुँचने से को कुछ दिनों बाद एक नए धर्म के प्रचारक और सदस्य सुसमाचार के पुनर्स्थापित का संदेश देने उनके शहर आए। उन्होंने एक विस्तृत कहानी बताई और एक देवदूत एक प्राचीन लिखावत को जोसेफ स्मिथ नाम का एक जवान लड़का को देखा। वो लिखावत उन्होंने परमेश्वर के शक्ति को के साथ अनुवाद किया था। उसमें से दो दर्शक ओलिवर काउड्री और जॉन विटमर ने उनको भी देखा था और विटमर ने कहा कि उसने सुनो के पन्नों पर हाथों में भी लिया था सोने के पन्ने को। ये लेख हाल में ही किताब में रूप में छिप गया था और भाई विटनर ने अपने साथ ये पुस्तक लाया। यह किताब मार्मन धर्मशास्त्र था। जब 12 साल की मेरी ने परकों को इस पुस्तक के बारे में बोलते हुए सुना उसके दिल में एक खास एहसास हुआ। भले ही मार्मन धर्मशास्त्र कई पन्नों का था मेरी उसे पढ़ना चाहती थी। यह भाई विटनर के पास गया। उसने किताब ली। अनमोल कॉपी भाई आइजक मोली को दी जो कि मेरी का मौसी का एक दोस्त था। मेरी ने बाद में लिखा मैं भाई मोली के घर गई और किताब को देखने की मांग की। उसने उसे मेरे हाथ में रखा और जब मैंने उसे देखा मुझे इतनी इच्छा हुई कि पढ़ने की कि मैं खुद रोक ना पाई और कि मैं इजाजत लूँ उसे पढ़ने के लिए। और उन्होंने कहा कि आप इसे ले सकते हैं अगर जो आप इसे मुझे लौटा दे। मेरे दौड़ती घर गई और किताब की ओर इतना आकर्षित हुई कि वो लगभग रात भर जागकर उसे पढ़ती रही। दूसरी सुबह जब उसने पुस्तक लौटाई भाई मोर्नी ने कहा मुझे लगता है कि तुमने इसमें बहुत कुछ नहीं पढ़ा और मैं नहीं विश्वास करता कि तुम मुझे इसी एक भी बात बताओगी। मेरी सीधी खड़ी हुई और याद करके मोर्मन धर्मशास्त्र का पहला वेश दोहराया। फिर उसने भविष्यवक्ता निफाई की कहानी बताई। मेरी ने बाद में लिखा वो अचंभे से मुझे देखता रहता और कहा बेटी ये किताब घर ले जा और पढ़ना खत्म कर मैं इंतज़ार कर सकता हूँ। कुछ समय बाद मेरी ने किताब पढ़ लिया और अपने शहर की पहली व्यक्ति से इसे पूरा पढ़ने की वो जानती थी कि ये सच्चाई है और स्वर्ग पिता का आया है। जब वह किताब की ओर देखी और वो प्रभु की ओर देखी एक महीना बाद एक खास दर्शक उसके घर आए। मेरी ने उसको दिन के अपने यादगार मुलाकात पर लिखा। जो जोसेफ स्मिथ ने मुझे देखा उसने गौर से देखा। कुछ क्षणों बाद उसने कहा मुझे एक महान आशीर्वाद दिया और उपहार में किताब दिया और कहा कि भाई मुरली दूसरी कॉपी है और यह अधिकार के द्वारा तुमसे दिया जाता है। ये जवान लड़की मेरी एलिजाबेथ रोलिंस ने अपने जीवन में कई चमत्कार देखे और हमेशा अपने मार्मन धर्मशास्त्र की गवाही को याद रखी। ये कहानी मेरे लिए खास है क्योंकि वो मेरी चौथी पीढ़ी की आजी थी। मेरी के उदाहरण से मेरे जीवन के कई अनुभवों से मैंने सीखा है कि कोई बहुत छोटी नहीं होती मार्मन धर्मशास्त्र को ढूंढने के लिए। मेरी की कहानी में एक निजी बात है तुम्हारे लिए। तुम जब जवान पुरुष जवान महिला और बच्चों को भी उसी तरह एहसास हो सकते हो जब तुम मार्मन धर्मशास्त्र पढ़ोगे और उसकी सच्चाई जानने की इच्छा करोगे उस प्रार्थना करोगे तुम भी अपने दिल में वही विचार पा सकते हो जो मेरी को मिला था। तुम ये भी पाओगे कि जब तुम खड़े होकर मार्मन धर्मशास्त्र की गवाही दोगे तुम्हें वही सच्चाई की आत्मा महसूस होगी। पवित्र आत्मा तुम्हारे दिल से बात करेगी। तुम इसी सच्चाई की आत्मा को महसूस करोगे मार्मन धर्मशास्त्र की गवाही देते सुनोगे। ये सब धार्मिक गवाही मिलकर धर्मशास्त्र गवाही का मूल तत्व है। मुझे समझने दो भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ जो मार्मन धर्मशास्त्र का अनुवाद किया है 1830 में मार्मन धर्मशास्त्र के पहले छुपने से पहले आज 110 अलग अलग भाषा में 174 मिलियन कॉपीज से ज़्यादा छाप चुकी हैं। ये दिखलाते हुए कि आज भी मार्मन धर्मशास्त्र हमारे धर्म का मूल तत्व है ये आप सबके लिए क्या अर्थ रखता है। आर्किटेक्चर्स संबंधी बोल में एक की स्टोन मूल तत्व है कि एक आश्चर्य दर्जा का ये वो पत्ती का आकार का पत्थर है जो बीच और सबसे ऊंचे स्थान पर होता है एक आर्च में। यह सभी पत्थरों में महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वो उस आर्च को इकट्ठा रखता है, उस गिरने की बचे किसे गिरने से बचे बचाता है, और यही वो बनावट का तत्व है जो ये तय करता है कि दरवाज़ा या नीचे का मार्ग या गुजराना मुमकिन या नहीं है। सुषमाचार के तरीके से ये प्रभु का एक उपहारण और आशीर्वाद है कि हमारे धर्म का मूल तत्व धर्मशास्त्र की तरह असली और चुने लायक है और कि हम पढ़कर इसको पा सकते हैं। क्या तुम मर्मन धर्मशास्त्र को अपने मूल तत्व अपने ताकत के धार्मिक केंद्र को सोचते हो? प्रेसिडेंट एजरा टेफ मॉन्सन ने बेंसन ने ये जोसेफ स्मिथ के शिक्षण दिया, उसने कहा तीन तरीके हैं जिससे मर्मन धर्मशास्त्र हमारे धर्म का मूर्त है। वो मसीह के हमारे गवाही का मूर्त है, वो हमारे सिद्धांत का है और वो हमारे गवाही का है। प्रेसिडेंट बोनसन ने यह भी कहा मोर्मन धर्मशास्त्र हमारे सच्चाई सिखलाता है और मसीह की गवाही देता है, पर कुछ और भी है। इस किताब में एक शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में आने लगेगी जब तुम किताब को कल दिल से ध्यान कर लगाओगे, तुम्हें ज्यादा शक्ति मिलेगा। मेरे जीवन में मोर्मन धर्मशास्त्र मेरे गवाही का मूल तत्व बन सकता है। कई अनुभव के बाद एक शक्तिशाली अनुभव हुआ मेरी गवाही को बन में जब मैं एक जवान प्रचारक था मेरे पहले क्षेत्र में कमाटो जापान में। मैं और मेरा साथी घर घर बैठ कर रहे थे। मैं एक नानी के से मिला जिसने हमें प्यार से अपने घर में आमंत्रित किया, जिसे जापनीज में गेंकन कहा जाता है। उसने हमें घर में एक दिन पर एक ठंडी शरबत दी। मैं जापान में बहुत दिन से नहीं था। अब मैंने हाल में धर्मशास्त्र को पढ़ना खत्म किया था और प्रार्थना कर रहा था निश्चय रूप से, क्योंकि मैं जापान में नया था। मैं जापानी अच्छी तरह से नहीं जानता था। असल में मुझे नहीं लगता था कि ये महिला समझ पाई। मैंने धर्मशास्त्र पढ़ाना शुरू किया और बतलाए हुए जिसके से जोसेफ स्मिथ ने प्रचारण की इसे दुनिया में लेकर आया है, इसका अनुवाद किया है। जब मैंने उसे अपनी गवाही बतलाई कि धर्मशास्त्र परमेश्वर का वचन है और यीशु मसीह का दूसरा गवाही, मुझे बहुत गहरा एहसास हुआ। उसके साथ मेरे छाती में सहानुभूति और शांति को कोमल एहसास हुआ जो धर्मशास्त्र में लिखा जाता है, तुम्हारा छाती अंदर से झलना। इस एहसास ने मुझ में शक्तिशाली तरीके सच्चाई बनाई बयान किया कि धर्मशास्त्र परमेश्वर का वचन है। उस समय पर मेरे एहसास इतने घिरे थे कि मेरे आंखों में आंसू आ गए। उस जापानी नानी ने बात करते हुए मैंने उस दिन एक खास एहसास कभी नहीं भूल सकता। तुम इसी प्रकार भी अपना गवाही पा सकते हो। क्या तुम जानते हो कि मर्मन धर्मशास्त्र तुम्हारे लिए लिखा था और तुम्हारे समय के लिए? इस किताब को संपूर्ण समय के इस युग में जीने का आशीर्वाद कहा जाता है। भले ही मर्मन धर्मशास्त्र प्रेरित प्राचीन लिखाकों के द्वारा लिखा गया है, जिनमें से कई भविष्यवक्ता वो और उनके समय के लोगों के पास इस पूरे किताब को रखने का संभव नहीं था, अब तुम्हारे पहुँचन में भविष्यवक्ता पादरियों और राजाओं के पवित्र लेख है जिसे वो बहुमूल्य समझते हैं, अपनाते हैं और सुरक्षित रखते हैं। तुम्हारे पास संपूर्ण मर्मन धर्मशास्त्र को हाथ में ले करने का संभव होगा। दिलचस्पी है, मर्मन धर्मशास्त्र का एक भविष्यवक्ता मोर्नाय ने हमारे समय देखा था। तुम्हारे समय को उसने तुम्हें भी देखा था दृश्यों में कई साल पहले। मोर्नाय ने लिखा है, सुनो, प्रभु ने मुझे महान और आश्चर्यजनक बातों को दिखाया है जो कि समझो समय होगी जबकि ये बातें यानी मोर्मन धर्मशास्त्र तुम्हें मिलेगा। सुनो, मैं तुमसे इसी तरह बोल रहा हूँ जैसे मानो तुम मेरे सामने उपस्थित हो, परंतु तुम यहाँ हो नहीं, लेकिन सुनो, यीशु मसीह ने मुझे तो दिखाया है और मैं तुम्हारे काम को जानता हूँ। मार्मिक धर्मशास्त्र को तुम्हारे गवाही का मूल तत्व बनने में मदद करने लिए मैं तुम्हें एक चेतावनी देता हूँ। मैंने हाल ही में सीखा है कि ये दुनिया के कई देशों में जवान लोग टीवी, कंप्यूटर और स्मार्टफोन के सामने लगभग 10 घंटे बैठते हैं। ये मन में रखते हुए क्या तुम एक छोटा बदलाव ला सकते हो? क्या तुम वो दैनिक स्क्रीन से कुछ समय, खास करके वो समय सोशल मीडिया, इंटरनेट, गेमिंग या टेलीविज़न में बिताते हो, को मोर्मन धर्मशास्त्र पढ़ने में बिताओगे? अगर जिस पढ़ाई को मैंने कहा सही ढंग से तुम आसानी से मोर्मन धर्मशास्त्र को पढ़ पाओगे, 10 मिनट चाहे वो दिन में हो, और फिर तुम उसे समझ भी पाओगे। आप में से कुछ है बच्चों के लिए, तुम आशीर्वाद इस दुनिया में माता पिता प्रिय साथ पढ़ोगे। तुम इस अनमोल किताब के पन्नों को पढ़ोगे और अपने प्रिय उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को लगभग हर पन्ने पर पाओगे। ये अनुमान लगाया जाता है कि उनका अलग अलग नाम एवरेज तौर से 1.7 वर्ष में एक बार इस्तेमाल किया गया है। मसीह ने खुद भी इसे सच्चाई की गवाही की अंतिम दिनों में दी है, ये कहकर जैसे तुम्हारा प्रभु और तुम्हारी परमेश्वर के लिए मैं आभारी हूँ निमंत्रण के लिए प्रभु मुर्नाय जिसे दिया है। मैं समाप्त करता हूँ इस निमंत्रण और वादा को पढ़ने से गवाही देकर। और जब तुमको ये बातें मर्मन धर्मशास्त्र प्राप्त होगी, तब मैं तुम्हें सदाओं सावधान करूंगा कि तुम परमेश्वर अमर पिता से मसीह के नाम पर पूछो कि क्या ये बातें सत्य नहीं है। अगर तुम सच्चे हृदय से अपने अच्छी अभिलाषा से मसीह में विश्वास करके पूछोगे, तब वो पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा तुम पर सच्चाई स्पष्ट प्रकट करेगा। मैं गवाही देता हूँ सुसमाचार के पुनस्थापना की इन अंतिम दिनों में और मोर्मन धर्मशास्त्र का कि वो पुनस्थापना का असली सबूत है। जैसे इस किताब के शब्दों ने एक 12 साल के लड़की को प्राप्त किया, यीशु मसीह के पुनस्थापित गिरजाघर को अपनाने का लगभग 100 साल पहले वहाँ पाए जाने वाली सच्चाई तुम्हें इसी तरह उन्नत और प्रेरित करेगी। ये तुम्हारे विश्वास को मजबूत करेगी, तुम्हारे हृदय को रोशनी भरेगी और तुम्हें एक ऐसा भविष्य के लिए तैयार करेगा जिससे तुमने कल्पना भी नहीं है। इस किताब के पन्नों में तुम परमेश्वर के अनंत प्रेम और अकल्पनीय कृपा को जानोगे। जब तुम इस उसमें पाए जाने वाले शिक्षण पर चलने की कोशिश करोगे, तुम्हारा आनंद बढ़ेगा, तुम्हारी समझदारी बढ़ेगी और जो जवाब तुम ढूंढते हो अपने मरणशीलता की कई चुनौती को लेकर मिलेगी। जब तुम किताब की ओर देखोगे, तुम प्रभु की ओर देखोगे। मोर्मन धर्मशास्त्र परमेश्वर का प्रकट किया हुआ शब्द है, इसी में गवाही देता हूँ अपने पूरे हृदय और मन से यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
धन्यवाद भाइयों। संचालन कर्ता के इशारे के पर सब खड़े होंगे और गायक मंडली के साथ कॉल टू सर्व को गाएंगे। उसके बाद हम 12 देवदूतों के परिषद के एल्डर डी टॉड क्रिस्टोफर्सन को सुनेंगे। उसके बाद 70 के एल्डर्स डब्ल्यू मार्क बैसेट और काजुहिको यमाशिता भाषण देंगे। फिर गायक मंडली गाएंगे I'll go where you want me to go.
This is the 186th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Thank you for that stirring anthem.
धन्यवाद गाने के लिए. धर्मशास्त्र हमें ये बतलाता है कि परमेश्वर प्रेम है. उसमें सारा प्रेम समाया है और हम सदा निर्भर रहेंगे. प्रधान थॉमस मॉन्सन ने कहा है परमेश्वर का प्रेम वहाँ हमेशा है. यहाँ कई तरीका है दिव्य प्रेम को समझने और बतलाने के. एक वाक्य आज हम अक्सर सुने हैं कि परमेश्वर का प्रेम बिना शर्त का है. सबकी एक और ये सच है. ये पहचान ये बेहतर वाक्य है क्योंकि वो शब्द बिना शर्त का गलत विचार व्यक्ति का सौख्य और दिव्य प्रेम है. जैसे परमेश्वर सब सहता है हम हमेशा प्रकटता नहीं क्योंकि उनके प्रेम बिना शर्त का है. ये परमेश्वर का हमेशा कुछ चाहता नहीं क्योंकि उसका प्रेम बिना शर्त का है. या अभी को परमेश्वर के राज्य में उधार मिलता है क्योंकि परमेश्वर का प्रेम बिना शर्त का है. परमेश्वर का प्रेम अनंत है और हमेशा तक रहेगा. मगर हमारे लिए इसका मतलब नहीं वही होगा कि कैसे हम उसके प्रेम को लगाए. जैसे पिता ने मुझे इस प्रेम में रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम किया. प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा प्रेम में बने रहो. अगर तुम मेरे आज्ञाओं को मानो तो मेरे प्रेम को स्वीकार करो, जैसे ही मैंने अपने पिता के आज्ञाओं का माना है और उसके प्रेम के स्वीकार किया है। परमेश्वर तुमसे हमेशा प्रेम करेगा, पर वो तुम्हें पापों के साथ नहीं उधार दे पाएगा। उनके शब्दों को याद रखो जिन्हें अमलेक के जेजरोम से कहा था कि उधारकर्ता को उनके पापों में ही नहीं मुक्ति करेगा, बल्कि उनको पापों उधार करने के लिए। वजह यह है कि कोई भी अपवित्र वस्तु स्वर्ग के राज्य की अधिकारी नहीं हो सकते, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना नहीं सकते, और कोई प्रेम पिता के एक शक्ति के गवाही है। मोमन धर्मशास्त्र से हम सीखते हैं कि मसीह के कष्टों के वजह क्या था। उनके प्रेम की आखिरी प्रदर्शन था कि वे निर्धन पर विजय प्राप्त करने वाली दया उपरना कर सकते और मनुष्य में पश्चाताप के लिए विश्वास ला सके। इस प्रकार दया न्याय की मांग को संस्कृत कर सकती और उसके सुरक्षा की बाहों में। पश्चाताप उनका हमारे लिए उपहार है, एक बहुत महंगी दाम में लिया गया। कुछ लोग बहस करते हैं कि परमेश्वर सबको एक समान आशीष देता है। उदाहरण में यीशु का वाक्य सेमन ऑन द माउंट को लिखा, परमेश्वर अच्छा और बुरे दोनों को अपने सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर अपना मैं बरसाता है। वास्तव में परमेश्वर अपने सभी बच्चों पर जितना उससे सके उतना आशीर्वाद देता है, वे सभी आशीर्वाद जो प्रेम और कानून के नियम और दया मांगते हैं, और वे हमें भी आज्ञा देता है कि उसकी तरह धनी बनो। मैं तुमसे कहता हूँ अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुम्हारे सर्प श्राप दे रहे उसके तो आशीष दो। तब भी परमेश्वर की महान आशीर्वादों आज्ञाकारी से जुड़ती है। प्रधान रसल एम नेल्सन ने कहा, परमेश्वर के प्रेम का सुंदर गुलदस्ता शामिल है अनंत जीवन। इसमें वो आशीर्वादों हैं जिसमें लिए हमें योग्य होना है। इसे अलावा एक व्यक्ति को पश्चातापी बनाना मासूम और पाप रहित वो वादा के साथी है कि वो अंतिम दिनों के उपहार उठा लिया जाए। एक दूसरा वजह है परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार करके। परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार कर ये मतलब है उसके इच्छा को पूरी तरह से करना। उसके मतलब है कि उसके उदाहरण के स्वीकार जब शुरुआत पड़े, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेर करता है उसे सजा देता है। इसका मतलब है कि एक दूसरे से प्रेम करना और सेवा करना, जैसे यीशु में हमेशा प्रेम और हमारी सेवा है की। इसका मतलब है कि सिक्ता सेलेशियल राज के कानून को स्वीकार, ताकि हम सेलेशियल महिमा को स्वीकार सके, ताकि वे हमें वो बना सके जो हम एक सकते हैं हमारे स्वर्ग पिता की हमेशा नियुक्ता करते हुए। पवित्र आत्मा के आकर्षित नहीं होता अपने आप स्वर्ग प्रवृत्ति को। डेलन ए चॉक्स ने कहा है, वो अंतिम दिन न्याय सिर्फ एक अंतिम गिनती नहीं है अच्छे और हर कर्मों में हमने किया क्या है, वो एक स्वीकृति है हमारे कामों और विचारों के अंतिम परिणामों के हमको था किया। हेलन केला की कहानी एक नित्कथा की तरह है, एक सुझाव कि कैसे दिव्य प्रेम इच्छापूर्ण हृदय को بدل سکتا ہے. ہیلن 1880 میں الاباما یونائٹڈ اسٹیٹس میں پیدا ہوئی تھی. جب وہ صرف 19 مہینے کی تھی اس کے ایک انجانا روگ پکڑا جس کے وہ بہری اور اندھی ہو گئی. وہ بہت بدھیمان تھی اور اشانت ہوئی جب وہ اپنی وتوارن کو سمجھنے کے لیے کوشش کرتی تھی اور کٹھنائی کے سامنا کرتی. جب ہیلن اپنے پریوار سدسیہ کے چلتی ہوئی ہونٹوں دیکھتی اور جانتی کہ وہ منہ سے باتیں کرتے ہیں نہ ان کی طرح اشارہ سے, وہ اتنی پریشان ہو گئی کہ وہ بہت چڑ میں شامل نہ ہو سکتی. 6 سال کی عمر پر ہیلن کی باتیں کرنے کی اچھا اور کر پڑنے لگی اور اس کے اور ہیلن کے ماتا پتا نے اس کے بیٹی کے لیے ایک ٹیچر بنایا, این سلیون نام کے ایک مہیلا, جیسے ہمارے یسوع مسیح میں ہے جو ہمارا کمزوری کو سمجھتا ہے. این سلیون نے بھی اپنے گمبھیر مشکل کو جھیلا اور ہیلن کے کمزوری کو سمجھتی تھی. 5 سال کے عمر میں اینے کو ایک بیماری ہوئی جس سے پیدا بہرا زخم ہوا, کونیا آنکھ کے سفید حصہ میں, اور اس کی زائدہ اندھا چھوڑ دیا. جب این کے ساتھ کی ہوئی اس کے ماں کی دیہانت ہوئی اور ماتا پتا اور ان کے چھوٹے بھائی ذمے ہو چھوڑ کر چلے گئے اور ان کے ایک غریبوں کی بسنے والی گھر میں بھیجا گیا جہاں استھتی اتنی غریب تھی کہ صرف 3 مہینوں میں جمی بھی مر گئی. این اپنے ان لگاتار محنت سے این پیکن اسکول فار بلائنڈ اور ویژن امپیئرڈ میں گئی جہاں اس نے بہت سفلتا پائی. ایک آپریشن کے وہ دیکھا پائی کی شروعات کے انوبھو سہانا نہیں تھا. ہیلن نے اپنے شکشا کو مارا چکوٹی کاٹی اور لٹ مارا اور اس کا ایک دانت توڑ دیا. این اور مارنا قابو میں کیا جب وہ ہیلن کے لے کر کیلا جانتا پر چھوٹے گھر پر لے گئی. دھیرے اور دھیر سنگتی کے ساتھ اس نے انت میں بچی کا دل اور بھروسہ پا لیا. اسی طرح جب ہم اپنے سوامی پر بھروسہ کرنا سیکھ لینا نہ کہ اس کے ڈر پر, تب وہ ہمیں جوتی دکھائیں گے اور ہمیں ایک نئے سچائی تک پہنچائیں گے. اچھا مجھے کچھ محسوس کیا ہوا جو میں بھولنے لگا تھا. جب ہیلن کیلا بڑی ہوئی اس نے بھاشا سے پریم لکھنے میں نپن اور اتم سمپورن جانک ہولی سے جانا جاتا تھا. ایک فلم میں ہیلن کیلا کے جیون دکھانے ہے اس کے ماتا پتا ایلن سولیون کے کام کے سنتوش دکھایا کہ جب اس نے منہ طوفانی پتری کو قابو میں لایا اتنا کہ ہیلن کہاں کے میز پر صرف بتر کے. مگر این جانتی تھی کہ ہیلن اور بہت کچھ کرنے کے لائق ہے. ہیلن کیلا نے محسوس کیا جب انہوں نے لیے شبدوں میں جان آئی اور ہردے میں روشنی دیتی ہوئی اور مکت کیا. ہم سب پرمیشور سے پریم اور ان کی سیوا کے سکتے ہیں اور اب کے ساتھی کو آشیش دینے کی شکتی پا سکتے ہیں. جیسے لکھا ہے جو انگ نہ نے نہیں دیکھی اور کہاں سے نہیں دیکھ سنا اور جو باتیں محسوس کے دل میں نہیں بسی وہ ہی ہے جو پرمیشور نے اپنے پریم رکھا والوں کے لیے تیار کیا ہے. हमें दुनिया देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि परमेश्वर का अनमोल प्रेम ने उस किता तालीफ हुआ है यीशु के बतलाए और हमारे पापों के प्रायश्चित दिलाने के लिए और मौत से मुक्ति देने के लिए, दोनों शारीरिक और आत्मिक। यह अच्छी तरह से जानना चाहता है रोम रोम से यीशु आएगा, लहू आएगा, जब उद्धारकर्ता ने गेतसेमनी जैतून निचोड़ के जगह में कष्ट झेला। उद्धारकर्ता के समय में तेल बहने के लिए जैतून के पहले बड़े पत्थर के ऊपर झेलना और कुचला जाता था, जिससे और तेल निकलता। अंत में एकदम आखिरी बूंद को निचोड़ने के लिए लोहे के दोनों कोने पर पत्थर लगा रखा जाता, ताकि ज्यादा बोझ डाला जाए जिससे सब तेल निकल जाए। और हाँ, तेल लहू जैसा लाल होता है जैसे वे प्रथम बार निकलता है। मैं मैथ्यू के उद्धारकर्ता के कहानी को याद करता हूँ, जो वो उस वैनिक रात्रि को गेतसेमनी में गया कि वे उदास और वैकुल होने लगा। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरा और वो प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे छोड़ लो, तो भी जैसे मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसे चाहते हो वैसा करो। उसने सबसे ज्यादा कष्ट के सहा। एक तीसरे बार उसने पैदा हुआ कि जब हमने गए, ये उसने तुम्हारे और मेरे मुक्ति के लिए किया। दिव्य प्रेम एक अनमोल उपहार है। यकीन परमेश्वर रोता है जब कोई इसे अस्वीकार करता है। क्या तुम उसे नहीं प्रेम करोगे जिसे पहले तुम्हारे तुमसे प्रेम किया? तुम उसके आज्ञाओं को मानो? क्या तुम उनके लिए एक दुष्ट नहीं बनोगे जिसके अपने प्राण अपने दोस्तों के लिए दिया? तुम उनके आज्ञाओं का पालन करो? क्या प्रेम को स्वीकार नहीं और वो सब ना ग्रहण करो कि वो उदारता से तुम्हें देखता है? तुम उनके आज्ञाओं का पालन करो। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वास्तव में हम उनके प्रेम को स्वीकार करेंगे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
When I was a young boy,
मैं एक जवान लड़का था। मेरे माता पिता को एक उपहार प्राप्त हुआ था जो मेरे छोटे भाई डेविड और मुझे बहुत आकर्षित लगता था। वह उपहार डेविड मोरोनाई ने भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ को प्राप्त हुआ एक छोटा सा सोने के प्लेटो के प्रतिरूप था। जबकि मुझे याद है कि प्लेटो के प्रतिरूप में 10 या ज़्यादा सोने के पन्ने थे जिस पर शब्द लिखे हुए थे। फिर भी वह पन्ने हमारे ध्यान में नहीं थे। हम पुनास्थापना के कहानियों को सुनकर बड़े हुए थे। हम जानते थे और प्राथमिक में सोने के प्लेटों को प्रधानों की गहराइयों में छुपे के बारे में गए थे और देवदूत मोरोनाई जोसेफ स्मिथ तक पहुंचाया को जब हमारे जवान बुद्धि में आगे जाने की इच्छा हुआ। वहाँ एक ही चीज़ थी जो हम देखना चाहते थे। क्या लिखा हुआ था प्लेटों के प्रतिरूप के उस छोटे से भाग में जो दो छोटे सोने के रस्सियों से बंधे हुए थे? पर प्लेटें कई दिनों तक एक छोटे से मेज पर पड़ी हुई हमारे उच्च करने की उम्मीद आगे तक। भले ही हमने साफ तौर से जान लिया था कि यह वही प्लेट नहीं थी जो उन्होंने दिया था, हम बंधे हुए भाग को देखना चाहते थे। तो कई साथियों में मेरे भाई और मैंने बटर लगाने वाली छुरी, पुराने चम्मचों और कुछ भी जो हमें लगा कि भाग को खोल देगा से कोशिश किया ताकि अंदर से देख सकें कि क्या था, परंतु इतना नहीं कि छोटे बंधनों को तोड़ सकें। हम इतना बुद्धिमान तो कि हम अपने किए हुए का कोई भी नशा ना छोड़ें। हमारे निराश और दुखी होने से जब हमारी कोशिश नाकामयाब हुई, मुझे अभी भी पता नहीं है कि कुछ भी क्या उस पन्ना प्लेटों में छुपा हुआ था, परंतु हमारे शर्मीला कहानी की कोशिश यह थी कि आज तक मुझे नहीं पता है कि क्या लिखा हुआ था पीतल के पन्नों पर जो पढ़ाना था, जो पढ़ना था। मैं सिर्फ यह सोचता हूँ कि उसमें जोसेफ स्मिथ और तीन और अंत गवाहियों की पुनामता और गवाहियों की कहानी लिखी हुई होगी जिन्होंने मोरोनाई के लिखे हुए सी प्लाटियों को देखा था। इस धरती के रचने तक हमारे प्रिय स्वर्ग पिता ने अपने बच्चों को भविष्यवक्ताओं द्वारा मार्ग निवेदित और शिक्षाओं को दिया है। उसके शब्दों को इन भविष्यवक्ताओं द्वारा लिखा गया ही और हमारे बंधति और शिक्षा के लिए संसार में लिखा गया है। निफाई ने इस तरह बताया, क्योंकि धर्मविधियों में मेरी आत्मा आनंद विभोर होती है और मेरा हृदय उनके मन में मगन है और मैं उन्हें अपनी संतानों की शिक्षा और लाभ के लिए रखा हुआ हूँ। देखो, मेरी आत्मा प्रभु की बातों में अनंत है और जिन बातों को मैंने देखा और सुना उन पर मेरा हृदय लगातार मनन कर रहा है। साथ में पिछले विधान और आखिरी विधान के पूरे होने तक प्रभु की गिरजाघर के लायक सदस्य को पवित्र आत्मा को हमेशा साथ रहने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है जो हमारे धार्मिक बंधति और शिक्षण में मदद करते हैं। दुर्भाग्य से हमारे बंधति और शिक्षाओं कई बार तक यह रुक ही सकती है कि मूर्ख इच्छा के कारण जानना और जरूरी नहीं है। ये कराए और उस चीजों तक ले जाने हैं जो कि इस समय पर समझाने की जरूरत नहीं है। अभी तक एक सुंदर सच्चाइयों को अनदेखा करना जो हमारे और हमारे सिद्धियों के लिए है। निफाई की सच्चाइयों हमारे शिक्षा और मुनाफे के लिए बतलाया गया है। निफाई के भाई जेकब ने सिखाया, देखो प्रभु के काम महान और आश्चर्यजनक हैं। उसके रस्सियों की गहराइयों को खोजना कितना कठिन है और उसके मार्गों के समझ पाना मनसुखियों के लिए संभव है। जेकब की वाणी हमें सिखाती है कि हम पूरी तरह से परमेश्वर के भेड़ को नहीं जान सकते, ये दबाव डाल सकते हैं हम जान के लिए, बल्कि परमेश्वर की रक्षाएं पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा सिर्फ उसकी इच्छा के अनुसार हम खोल सकते जाएंगे। जेकब आगे बतलाया, और कोई भी मनुष्य उसके मार्गों के नहीं जानता जब तक वह इन्हें प्राप्त ना करे। इसलिए भाइयों, परमेश्वर के प्रतिक्रियों से उपेक्षा मत करो, क्योंकि देखो उसे वचन की शक्ति के द्वारा मनुष्य पृथ्वी पर आए, और तो क्योंकि पृथ्वी को आए नहीं दे सकते थे, इसे ऊपर उसके हाथों की कारीगरी उसकी इच्छा और मर्जी से क्यों नहीं हो सकती। इसीलिए भाइयों, प्रभु को सलाह देने का प्रयास न करें, लेकिन उसके हाथों से सलाह लें। परमेश्वर के भेद को जानने के लिए यह वह चीजों को जो सिर्फ प्रतिकरण से जानी जा सकती है के लिए हमें निफाई के उदाहरण पर ही चलना होगा, जिसने कहा, आओ मैं बहुत छोटा था फिर भी शरीर से अपनी अवस्था से अधिक हस्त पुष्ट और बलवान था, और परमेश्वर के भेड़ों को जानने के लिए मेरी बड़ी अभिलाषा थी, इसीलिए मैं प्रभु को पुकारा। सुनो, उन्होंने मुझे द्वारा दर्शन दिए और मेरे हृदय को इतना विनम्र किया है कि मैंने अपने पिता द्वारा कहा गए हर एक शब्दों पर विश्वास किया। प्रभु ने खुद ही आगे बतलाया कि निफाई ने अपनी विश्वास से लगा और पढ़ाया, खोजा और उनके आगे पालन किया। निफाई ने उदाहरण में ज्ञान को ढूंढने में एक सच्चे चाहत, विनम्रता प्राप्त भविष्यवक्ता में विश्वास और विश्वास लगन और लायक से करना शामिल है। यह तरीका से ढूंढना मेरे लिए एक महान तुलना है। इन नई पीढ़ी में हमने यह जानना है कि ज्ञान को पा सकते हैं और तुरंत ही पाना चाहिए। जब जानकारी आसानी से प्राप्त ना हो या मिले, उसे हमेशा अनदेखा या विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई जानकारियां के कारण बिना ही सही पहचान को जानने सिद्धांतों पर ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रभु के बनाए हुए व्यक्तिगत प्रतिकरण को प्राप्त करने पर निर्भर होना चाहिए। जेकब ने हमारे समय के लिए बतलाया होगा जब उन्होंने कहा, लेकिन देखो ये हति लोग थे और उन्होंने स्पष्टता के शब्दों को अनदेखा कर दिया और उन बातों की खोज करने लगे जिसे वह समझते नहीं थे। इसीलिए उनके अंधेपन के कारण यह अंधापन इसीलिए ये देखने के लिए कारण आया था। उनका पतन अवश्य होना था क्योंकि परमेश्वर ने अपनी स्पष्टता को उनसे वापस ले लिया और उन्हें ये बताया दिया कि जो यह वही समझते थे क्योंकि उन्होंने इसीलिए इच्छा की थी। वे प्रभु में उतना विश्वास रखेंगे कि उसके आज्ञाओं का पालन करेंगे, भले ही यह पूरी तरह से कारण को खुद के लिए नहीं जानेंगे, उनके विश्वास लगन को कराई के द्वारा बढ़ेंगे। पिछले अप्रैल की सभा में डेलिन एच ओक्स ने समझाया, गिरजाघर बहुत ही कोशिश कर रहा है कि हमारे पास लेख को पहुंचाने के लिए, परंतु हमारे छपने जाने के बेवजूद हमारे सदस्यों के पास कुछ भी सवाल होते हैं जो शिक्षा से पूरे नहीं होते, वह जो हैं जो विश्वास से पूरे होते हैं। पुराने भविष्यवक्ता ने यही सिखाया को सिखलाया था, बतलाया हुआ कि समय बीत गया पर इंसान नहीं बदले और प्रभु के सिखाने पर पात अनंत तक है। इस पुराने नियम प्रोवर्ब को देखो, तू अपनी समझ सहारा न लेना, वापस न प्रभु पर भरोसा रखना। इजाया ने समझा है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरी तुम्हारी सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। निफाई ने एक और गवाही दिया जब उसने बताया, वह प्रभु मैं तुम पर विश्वास किया और सदियों तुम पर विश्वास करता ही रहूंगा। प्रभु मैं विश्वास और भरोसा हमारे ज्ञान के लिए जरूरी है, जानना कि उसका ज्ञान हमारे खुद से महान है। हमने यह भी जाना चाहा है कि उसके धार्मिक बंधित और शिक्षाओं के लिए सबसे ज्यादा शक्ति देता है। हमने कभी सीच नहीं था कि चीजों का पूरा ज्ञान मिलेगा कि मानसिल जीवन के दौरान, बल्कि हमने सोचा था विश्वास है तो अनदेखी चीजों की आशा रखो जो कि सच है। निफाई की महान विश्वास से भी उनके अपने काम समझ से जाना जब उसने देवदूतों को जवाब दिया जिसने उस पूछा था, क्या तुम परमेश्वर की कृपा नहीं जानते? निफाई ने जवाब दिया, मैं जानता हूँ कि वह अपने बच्चों से प्रेम करता है, फिर भी मैं भी बातों का अर्थ नहीं जानता। उसी तरह एल्मा ने अपना पुत्र हेलमन से बताया, अब की भेड़ों को अभी पूरी तरह से मुझ पर प्रकट नहीं किया गया है, इसीलिए मैं धीरज रखूंगा। मैं अपनी गवाही देता हूँ कि हमारे स्वर्ग पिता अपने बच्चों से प्रेम करता है, और फिर भी निफाई और एल्मा की तरह मैं सभी चीजों का मतलब नहीं जानता हूँ और मुझे सभी चीजों को जानना जरूरी भी नहीं है। मुझे भी तमन्ना चाहिए और प्रभु को शांति से इंतजार करना चाहिए, जानते हुए कि मेरे पास सभी कुछ की का गवाही है कि यह सभी कुछ और तुम्हारे पास भी सभी चीजों की गवाही है कि यह सच्चे हैं और सभी चीजें सूचित करते हैं कि परमेश्वर हैं, यहाँ तक कि पृथ्वी और इसकी भी सारी चीजों हैं, इसी की इसकी गति है और ग्रह जो कि अपने नियमित दूरी पर चलती हैं, यह सभी साक्षी हैं मानते हैं। जबकि हम जानते हैं कि बुद्धिमान और भक्ति पुरुष स्वर्ग से पिता के कर्मचारी हैं, और फिर क्यों नहीं, क्यों हम उसे धार्मिक पढ़ाई और शिक्षा का मार्ग दिखलाने दो उसकी इच्छा और मर्जी से, नहीं ना कि अपने खुद के। वह जीवित है, यीशु मसीह के एकलौते पुत्र और मनुष्य और मुक्तिदाता है। मसीह के अनमोल प्रायश्चित के कारण उसके पास ज्ञान और दृश्यता है हमें इस अंतिम दिनों के मार्ग दिखलाने के लिए। जोसेफ स्मिथ उनका भविष्यवक्ता है, उसके राज्य को इस धरती पर पूरी तरह से अपना स्थापित करने के लिए है। थॉमस एस मॉन्सन उसका आज ही जीवित भविष्यवक्ता और वार्ताकार है। मैं इसका सच्चा गवाही देता हूँ इसको मसीह के नाम पे। आमीन।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं गिरजाघर के जवान लोगों जिसमें हमारे आश्चर्य प्रचारक भी शामिल है से बातें करना चाहते हूँ। सही में भाइयों और बहनों जो दिल से जवान है को सुनने के लिए आमंत्रित किया जाता है। पिछले अगस्त को प्रधान रसल एम नेल्सन ने सुंदर सपोरो मंदिर समाप्त किया था। जापान का तीसरा मंदिर सपोरो मंदिर दक्षिण जापान में होकाइडो नामक स्थान पर बनाया गया था। यूटा की तरह होकाइडो सक्रिय मेहनती पूर्वजों द्वारा तैयार हुआ था। 1876 में एक जाने माने शिक्षक डॉक्टर विलियम क्लार्क नामक होकाइडो में आकर सिखलाने के लिए आमंत्रित किया जा गया। वो जापान में सिर्फ अंत महीनों तक रहा, परंतु उसके ईसाई कार्य उसके जवान ईसाई धर्म न पाने वाले विद्यार्थियों पर खत्म न होने वाला एहसास छोड़ा। उसने कहा, लड़को अभिलाषा रखो, मसीह के लिए अभिलाषा रखो। उसका गया, मसीह के लिए अभिलाषा रखो। आज के अंतिम दिन संतों के लिए सीधे हमेशा फैसलों को बनाने में मदद करेंगे। मसीह में अभिलाषा रखने के लिए क्या मतलब है? मसीह में अभिलाषा रखने का मतलब है उसके कार्य में प्रेरित, केंद्रित और समर्पित रहना। मसीह में अभिलाषा रखने का मतलब है कि हम जनता की मोल के लिए चुने गए हैं। मसीह में अभिलाषा रखने का मतलब है कि हम अपने वर्ड्स और शाखाओं में विश्वासी होकर और सावधानी से सेवा करें, बिना कोई शिकायत करें और खुशी भरे हृदय से। दुनिया भर में हमारे सेवा प्रदान करे हुए प्रचारकों को मसीह के सच्चे अभिलाषा है के सुंदर उदाहरण है। कुछ साल पहले बहन यमाशिता और मैं जापान नगोया मिशन में साथ सेवा प्रदान किया। हमारे प्रचारकों मसीह में बहुत ही अभिलाषा थे। उन्हें प्रचारकों में से एक जवान लड़का एल्डा कावन नामक था। एल्डा कावन ने पास दहिना पैर नहीं था क्योंकि युवा में एक साइकिल की दुर्घटना हुई थी। मिशन पर कुछ सप्ताह बाद मैंने उसकी साथी के एक फोन कॉल प्राप्त किया। एल्डा कावन की जोड़ पर रखने वाली टंग घुट गया था जब वो साइकिल चला रहा था। हम उसके एक अच्छा सुंदर चमत्कार वाले के पास ले गया। मैंने जाना कि उसने कितना पीड़ा हो सका होगा। फिर भी हफ्ते बीते गए। जिद पर करने वाला पैर बार बार टूटा गया। केंद्रा मेरे के सलाहकार ने सलाह दिया, एल्डर कावन को वापस घर भेज दिया जाए ताकि उसे दूसरा मिशन दिया जाए। एल्डर कावन एक महान प्रचारक था और उसके पास एक शक्तिशाली इच्छा था जापान में रहने का। धीरे से एल्डर कावन अपने शारीरिक क्षमता को खो दिया। इसके बावजूद वो बड़बड़ाया और शिकायत नहीं किया। दोबारा मुझे सलाह मिली कि एल्डर कावन को उस स्थान पर सेवा प्रदान करने का मौका मिली जहाँ उसे साइकिल नहीं चलाना पड़ता। मैंने इस स्थिति पर गौर किया। मैंने एल्डर कावन और उसके आने वाले जवान के बारे में सोचा और मैंने उसे स्थिति पर प्रार्थना किया। मैंने चाप महसूस किया कि हाँ, एल्डर कावन को वापस घर जाना चाहिए और दोबारा नियुक्ति के लिए रुकना चाहिए। मैं उसको फ़ोन किया और अपने प्रेम और चिंता को, और उसने अपने फैसले को बतलाया। उसने जवाब में कुछ भी नहीं किया। मैंने उसे सिर्फ फ़ोन में रोते हुए सुना, मैंने तुम्हें कल फ़ोन करूँगा, कृपया मेरे सिफारिश को सच्चे प्रार्थना के साथ करना। जब मैंने उसे दूसरे सुबह फोन किया उसने मुझे बतलाया कि वो मेरे सलाह विनम्रता से मानेगा उसके साथ मेरे अंतिम वार्तालाप के दौरान मैंने उसे ये सवाल पूछा है लकावन क्या तुम्हें अपने मिशन पर जाने का प्रचार फोन पर एक अच्छा जहर किया था कि जाना तुम्हें साइकिल ना चलानी पड़े उसने कहा यहाँ प्रधान मैंने कहा था मैंने जवाब दिया लकावन तुम्हें जापान नगोया मिशन पर नियुक्ति प्रदान हुई थी जहाँ तुम्हें साइकिल चलाना पड़ता क्या तुमने अपने स्टेक प्रेजेंट को यह बतलाया था मैं उसके जवाब और आश्चर्य में पड़ गया उसने कहा नहीं मैंने नहीं बतलाया मैंने फैसला किया कि अगर वहाँ वही स्थान है जहाँ प्रभु मुझे नियुक्ति किया है मैं किम जाऊँगा हमारे जांच के अंत में उसने मुझे से अपने कौन में आंसू भर कर यह सवाल पूछा प्रधान मैं जापान क्यों आया मैं यहाँ क्यों हूँ मैंने उसके बिना कोई रुकवाट से के जवाब दिया यार लकवान मैं एक कारण ही जानता हूँ कि तुम यहाँ आए तुम यहाँ मेरे मदद के लिए आए मैंने यह जाना है कि मैंने बहुत ही महान व्यक्ति के साथ सेवा प्रदान किया है मुझे तुम्हें जानने के लिए आशीर्वाद प्राप्त हुआ है मैं एल्डर कावन को उसके प्यारे घर वापस जाने से को बतलाने में खुश हूँ और उसके दूसरा सेवा के लिए नियुक्त किया गया मैं सिर्फ एल्डर कावन के लिए खुश नहीं हूँ परंतु दुनिया भर के सभी प्रचारकों के लिए जो बिना कोई फसफसाहट या शिकायत के सेवा करते हैं धन्यवाद भाइयों बहनों तुम्हारे विश्वास के लिए तुम्हारे ध्यान और तुम्हारे मसीह में शक्तिशाली अभिलाषा के लिए मोमन के धर्मशास्त्र में कई कहानियां हैं उनके बारे में जो मसीह में अभिलाषा थे अल्मादा यंगक जब एक जवान लड़का ने गिरजाघर और उसके सदस्यों का बुरा किया था वह प्रभु की मार्ग पर चला था और उसने अपने साथियों को आशीर्वाद दिया था जब वो उनके साथ सेवा कर रहा था प्रभु ने उसे शक्ति दिया था और वो अपने मुसीबतों में सफल हुआ था अल्मा ने अपने पुत्र हेलमन को यह सलाह दिया जो कोई भी परमेश्वर में अपना विश्वासी दिखलाएगा तो वह उनकी सहायता उनकी परेशानियों और उनके देखों और उनके कष्टों में परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करो अपने कर सारे कर्मों में प्रभु से सलाह लो और अच्छे करने के लिए वो तुम्हें निर्देश देगा हमारे दूसरे पुत्र अपने युवा में गिरजाघर से दूर थे जब वो 20 साल का हुआ उसके साथ एक अनुभव हुआ जिसने उसे उसके जीवन को बदल दिया उसने परिवार और गिरजाघर के सदस्यों के प्रेम प्रार्थनाओं और मदद के साथ और कक्षाकर प्रभु के दया और महिमा के साथ वो गिरजाघर वापस आया बाद में उसे वाशिंगटन सियाटल मिशन में सेवा करने की नियुक्ति प्राप्त हुई उसने बहुत ही निराशा झेलता पहले 3 महीने के सभी रातों को वो बाथरूम में जाता और रोता अलकावन की तरह उसने सोचा कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ एक साल सेवा करने के बाद हमने एक ईमेल प्राप्त किया जो हमारे प्रार्थना को जवाब था उसने लिखा अभी मैं परमेश्वर और यीशु के सही प्रेम को जान गया हूँ मैं पुराने भविष्यवक्ताओं की तरह बनने के लिए बहुत माँ उसने नंद करूँगा भले ही मैं बहुत ही मुश्किलों से गुजार रहा हूँ मैं बहुत खुश हूँ यीशु के सेवा करना सबसे सच्चा कार्य है यहाँ पर से आश्चर्य और कुछ भी नहीं है मैं बहुत खुश हूँ उसने अल्मा की तरह महसूस किया और वो मैंने कितना अद्भुत आनंद और प्रकाश देखा हाँ जितना अत्यधिक पीड़ा मेरी आत्मा में ही उतना ही आनंद मेरी आत्मा में भर गया हम अपने जीवन में अनुभव से गुजरते हैं परंतु अगर हम मसीह में अभिलाषा रखेंगे हम उस पर ध्यान डाल सकेंगे और उनके साथ खुश रहेंगे. हमारे मुक्तिदाता एक महान उदाहरण है. उसने अपने पवित्र सेवा को जानना था और परमेश्वर के पिता के साथ आज्ञाकारी था. ये एक महान चुनाव है. हर सप्ताह उसके महान उदाहरण को याद करना जब हम प्रभु भोज लेते हैं. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम मसीह के लिए अभिलाषा रखते हैं जब हम विश्वासी की तरह सेवा करते हैं, विनम्रता से स्वीकार आनंद तक दया करते, हमेशा प्रार्थना करते और लायक से लाते हैं. मैं आशा करता हूं कि हम मसीह के लिए अभिलाषा रखेंगे जब हम अपने मुसीबतों और न्याय को शांति और विश्वास से स्वीकार करेंगे और खुशी प्राप्त करेंगे हमारे बनाए हुए वादों में. मैं गवाही देता हूं कि प्रभु तुम्हें जानते हैं. वो तुम्हारा पीड़ा और चिंताओं को जानता है. वो तुम्हारे उसकी सेवा करने की भक्ति की इच्छाओं को जानता है या कार्य को भी. वो तुम्हें मार्ग और आशीर्वाद दे जब तुम यह करो. यीशु मसीह के नाम से आमीन.
We are grateful for
उन सभी के आभारी है जो इस शाम को भाषण दिया और प्रचारकानों के गायक मंडली को सुंदर संगीत प्रदान करने के लिए हम महापुरोहित सभा के भाइयों को याद दिलाते हैं
beautiful and just wonderful.
कि शाम 6 बजे माउंटेन डेलाइट पर सम्मेलन केंद्र में शुरू होगा देशभर का मोमेंट अब नकल गायक मंडली प्रसारण कल सुबह 9:30 से 10 AM तक रहेगा माउंटेन डेलाइट टाइम पर सम्मेलन का रविवार सुबह का सभा उसके तुरंत बाद रहेगा हमारे इस सभा का अंतिम भाषणकर्ता बारा देवदत्तों के परिषद का एल्डर डेलन एच ऑक्स द्वारा होगा उसके भाषण के बाद गायक मंडली सबको होप ऑफ इजराइल को अंतिम संगीत के लिए गाएंगे सत्तर के एल्डर एलन डी हेनी द्वारा अंतिम प्रार्थना किया जाएगा
हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने अपने धरती पर प्रचार के अंत के समय अपने चेलों को कहा इसलिए तुम जानकर जाकर और सब जातियों के लोगों को सिखलाओ और तुम संसार में जाकर और सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो सभी ईसाई लोगों को इस आज्ञा का पालन करना है सब लोगों के साथ कई लोग इसे वो महान आज्ञा पत्र कहते हैं अंतिम दिन संत सबसे ज्यादा वफादार में से है एक जिम्मेदारी की ओर हमें भी रहना है क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर अपने सभी बच्चों से प्रेम करता है और इस आखिरी दिनों में उसने जरूरी ज्ञान और शक्ति पुनर्स्थापित की है और सबको आशीष देने की के लिए उद्धारकर्ता ने हमें सिखलाया कि हमें सबसे प्रेम करना अपने भाई बहन की तरह और हम इस शिक्षण के सम्मान करते हैं गवाही और पुनर्स्थापित समाचार संदेश सभी देशों संबंधियों भाषाओं और लोगों में बांटो ये एक आवश्यक भाग है एक अंतिम दिन संत होने का हम इसे एक खुशी का सौभाग्य मानते हैं परमेश्वर के बच्चों में आनंदता की सच्चाई को बांटने से ज़्यादा खुशी और कैसे मिल सकती है आज हमारे पास कई उत्पादन है सुसमाचार बांटने के लिए जो कि पहले से पीढ़ियों को ना उपलब्ध थे हमारे पास टीवी इंटरनेट और सोशल मीडिया के चैनल हैं हमारे पास कई लाभदायक संदेश हैं पुनर्स्थापित सुसमाचार को सिखाने के लिए हमारा गिरजाघर प्रसिद्ध है कई देशों में हमारे पास कई गुना ज़्यादा प्रचारक हैं मगर क्या हम इस साधनों को पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं मैं सोचता हूं कई लोग नहीं करते हमारी इच्छा है कि हम पूरी दुनिया में पुनर्स्थापित सुसमाचार प्रचार करने का अपना दिव्य रूप से आ गई जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाएं सुसमाचार प्रचार करने के लिए कई अच्छे सुझाव है हमारे स्टेक्स या देशों के लिए हालांकि क्योंकि हमारा गिरजाघर पूरी दुनिया में है मैं वो सुझाव बतलाऊंगा जो सभी जगह के लिए ठीक रहेगा सबसे नए यूनिट के लेके सबसे आयोजित तक उन संस्कृत से जो यीशु मसीह के सुसमाचार को अभी स्वीकार करके करते हैं से उन देशों तक जो धर्म को अस्वीकार करते हैं मैं उन सुझाव को बताता हूँ चाहता हूँ जो आप उससे बात सकते हो जो यीशु मसीह के सच्चे चेलो हैं तथा उनके साथ जिन्होंने उनका नाम कभी नहीं सुना होगा उनके साथ जो अपने अभी के जीवन के से संतुष्ट है तथा उनके साथ जो खुद को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं मैं क्या कहूँ जो सुसमाचार प्रचार करने में तुम्हें मदद करे चाहे तुम्हारे परिस्थिति जो भी हो हमें हर एक सदस्य का मदद की ज़रूरत है हाँ हर सदस्य मदद कर सकता है, क्योंकि कई कार्य करने पड़ते हैं पुनर्स्थापित सुसमाचार के हर देश संबंधी भाषाओं और लोगों तक पहुंचाने के लिए। हम सब जानते हैं कि सदस्य का मौजूद होना प्रचार कार्य में कितना जरूरी है, संपन्न और संगति रखने में। प्रधान थॉमस एस मॉन्सन ने लिखा कहा है, अब समय है सदस्य और प्रचारक को साथ मिलने का, प्रभु के बगीचे में काम करने उनके पास आत्माओं को लाए। उसने हमारे लिए कई तरीके तैयार किए हैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए, और वो हमारे और हर कोशिश में मदद करेगा अगर हम विश्वास के साथ उनके कार्य पूरा करेंगे। सुसमाचार प्रचार करना जीवन भर का एक ईसाई कर्तव्य सौभाग्य है। एल्डर क्विंटन एल कुक हमें याद दिलाता है, प्रचारक कार्य पियानो के 88 कीज की तरह नहीं है जो हम सिर्फ कभी कभी बजाते हैं। वो एक मुख्य स्वर है, एक मधुर संगीत का जिसे हमारे जीवन भर में बजेगा अगर हम ईसाई धर्म और यीशु मसीह के सुसमाचार के प्रति तल में मिलकर रहना चाहते हैं। वहाँ तीन चीजें हैं जो हर सदस्य का कर सकता है सुसमाचार बांटने के लिए, भले ही कोई परिस्थिति में रहते हैं काम करते हो। हम सबको ये सब चीजें करने चाहिए। पहला, हम सब प्रार्थना कर सकते हैं उद्धार के कार्य के आवश्यक भाग में मदद करने की इच्छा के लिए। सभी कोशिश डिजायर से शुरू होती है, इच्छा से। दूसरा, हम खुद आज्ञाओं का पालन कर सकते हैं। विश्वासी आज्ञाकारी सदस्य पुनर्स्थापित सुसमाचार के सच्चाई और मोल के सबसे फुसलाने वाले गवाही है। इसे भी जरूरी, विश्वासी सदस्य के साथ हमेशा उनकी आत्मा होगी। उन्होंने मार्ग दिखाने के लिए जब वो यीशु मसीह के पुनर्स्थापित सुसमाचार बांटने के मेहमान कार्य में भाग लेंगे। तीसरा, हम प्रेरणा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हम अपने ही परिस्थिति में क्या कर सकते हैं और औरों को सुसमाचार बांटने के लिए, ये अलग बात है प्रचारकों के लिए प्रार्थना करने से या अन्य लोग क्या कर सकते हैं के लिए प्रार्थना करने के लिए। खुद हम क्या कर सकते हैं के लिए प्रार्थना करने के चाहिए। जब हम प्रार्थना करें, हमें याद करना है चाहिए कि इस तरह के प्रेरणा के लिए प्रार्थनाओं के जवाब मिलेगा जब एक प्रतिज्ञा के साथ हो जिसमें धर्मशास्त्र कहता है सच्ची चाह या पूरे दिल से। एक प्रतिज्ञा के साथ प्रार्थना करो कि तुम हासिल की गई प्रेरणा पर अनमोल करोगे, प्रभु से वादा करके कि आज्ञा अगर वो तुम्हें किसी सुसमाचार के बारे में बोलेगा, प्रेरणा देगा, तुम वैसा ही करोगे। हमें प्रभु की मार्गदर्शन की जरूरी है, क्योंकि किसी ना किसी पर कुछ लोग तैयार होता है और कुछ नहीं होते हैं। पुनर्स्थापित सुसमाचार की सच्चाई के लिए हमें कभी खुद से न्याय नहीं कर लेना है कि कौन तैयार है और कौन नहीं। प्रभु अपने सच्ची बच्चों सभी बच्चों से हृदय से जानता है, और अगर हम प्रेरणा के लिए प्रार्थना करेंगे वो हमें मदद करेगा कि हम उसे ढूंढें। वो जानता है, तैयारी कर रहे हैं वचन को सुनने के लिए। प्रभु के एक देवता के रूप से मैं गिरजाघर के हर एक सदस्य और परिवार से निवेदन करता हूं कि वे प्रभु से प्रार्थना करें उन्हें उन लोगों को पाने के लिए जो यीशु मसीह ने पुनर्स्थापित सुसमाचार प्रदान करने के लिए तैयार किया है। एल्डर एम रसल बर्डर ने ये जरूरी सलाह दी है जिससे मैं सहमत हूं। प्रभु पर भरोसा करो, वो अच्छा चरवाहा है, वो अपने भेड़ों को जानता है। अगर हम इसमें व्यस्त ना हुए, कई लोग जिन्हें संदेश सुने हैं को मौका नहीं मिलेगा। इसके सिद्धांत बहुत सिद्धांत है प्रचारक मौकों के लिए। खुद और पवित्र के प्रार्थना करो। जब हम अपना विश्वास आजमाते हैं ये मौका मिलेंगे बिना कोई कर्तव्य के एहसास के पहले से आयोजित योजना के जरिए। ये हमारे भाइयों और बहनों से प्रेम का प्रतीक प्रेरणा का जैसा मिलेगा। मैं जानता हूँ ये सच है। मैं अपना गवाही इसके साथ मिलाता हूँ कि प्रभु के मदद में विश्वास से हमें मदद, दर्शन, प्रेरणा और महान आनंद मिलेगा। प्रेम की उस आनंद रूप से अवश्य कार्य में हम ये समझ पाएंगे कि सुसमाचार प्रचार करने की सफलता का मतलब है लोगों को प्रेम और असली चाह से आमंत्रित करना, उनकी मदद करने के लिए चाहे जो भी उनका रवैया हो। ये कुछ और भी चीज़ें हैं जो हम अच्छी तरह से सुसमाचार बांटने के लिए कर सकते हैं। हमें याद करना है कि इंसान जब सीखते हैं तब वो तैयार होते हैं, ना कि जब हम तैयार होते हैं उन्हें पढ़ाने के लिए। क्या है हमारी दिलचस्पी? जैसे कि पुनर्स्थापित गिरजाघर की सिद्धांत संबंधी आवश्यक शिक्षण ही ज़्यादातर वजन ना नहीं होती औरों की दिलचस्पी की। अन्य लोग खासकर सिद्धांत के परिणामों को देखते हैं, सिद्धांत को नहीं। जब वो हमारे जीवन में यीशु मसीह के सुसमाचार को के प्रभाव को देखते हैं या अनुभव करेंगे, वे आत्मा को महसूस करेंगे और सिद्धांत में उन्हें दिलचस्पी होगी। वो शायद और जिस दिलचस्पी दिखाएंगे जब वो ज़्यादा खुशी, परमेश्वर से नज़दीक रहना या जीवन के लक्ष्य की समझ ढूंढ रहेंगे। इसलिए हमें ध्यान से और प्रार्थनाशीलता से ये जान लेना है कि कैसे किसी की और सीखने की दिलचस्पी के बारे में पूछे। ये कई बातों पर निर्भर होता है, जैसे एक इंसान के वर्तमान के हालात और उनके साथ हमारा संबंध। इस विषय की चर्चा विचार सभाओं प्रधान सदस्य और लिप साटी में ठीक रहेगा। दूसरा, जब हम दूसरों से बातें करें, हमें ये याद रखना है कि यीशु मसीह और उनके सुसमाचार को सीखने का निमंत्रण ज़्यादा पसंद होता है गिरजाघर को सीखने के निमंत्रण से। हमें मनुष्य को सुसमाचार की ओर समर्पित करना है। हमारे गिरजाघर के प्रति एहसास यीशु मसीह में समर्पित होने से आता है, उससे पहले नहीं। कई लोगों को गिरजाघरों के प्रति शक्ति होते उद्धारकर्ता प्रेम होता है पहले बात को पहला ही क्या करते हैं। जब हम लोगों को पुनर्स्थापित सुसमाचार से परिचित करना चाहते हैं, हमें ऐसा उनके लिए ईमानदारी और सच्चा प्रेम से करना है। ऐसा होता है जब हम औरों की मदद करने की कोशिश करते हैं, उनके मुश्किल को करने में, या जब उनके साथ काम करने है, जैसे समाज सेवा कार्य में, जैसे कष्ट दूर करना, गरीब जरूरतमंद की सहायता या किसी के जीवन का स्तर। चौथा, हमारी कोशिशों सुसमाचार बांटने की सिर्फ हमारे दोस्तों और जान पहचान लोगों तक नहीं होना चाहिए। ओलंपिक्स के द्वारा हमने रियो डी जनेरो के एलडीएस टैक्सी चलाने वाले के बारे में जाना, जो 7 अलग भाषाओं की मर्मन धर्मशास्त्र अपने साथ रखता था और जो कोई चाहते थे उसको देता था। उसने खुद को टैक्सी चलाने वाला प्रचारक नाम दिया जाता। उसने कहा, रियो डी जनेरो के रास्ते ही प्रचार का मैदान है। क्लेटन एम क्रिस्टन, जिसके पास एक सदस्य प्रचार होने की बहुत इच्छा अनुभव है, कहता है कि पिछले 20 सालों में हमने कोई मेल नहीं देखा एक रास्ता की गहराई, और वो इस संभाव में कि लोग सुसमाचार को सीखने में दिलचस्पी दिखाएंगे। पांचवा, वर्ड्स के विषपरिक एक खास प्रभुभोज की सभा का आयोजन कर सकता है, जैसा सदस्य को दिलचस्पी दिखाने वाले लोगों को चलाने का निमंत्रण दिया जाएगा। वर्ड के सदस्य में कम हिचकिचक होगी। हमारे अपने जान पहचान लोगों को अच्छे संभा में लाने में छे, यहाँ कई ऐसा मौके हैं सुसमाचार बांटने के। उदाहरण के तौर पर इसी छोटी के मौसम में मुझे एक खुशल पत्र मिला एक नए सदस्य से, जिसे मुझे पुनर्स्थापित सुसमाचार के बारे में एक पुराने खास का कसका सही है। उसने कहा, मुझे अच्छा लगा कि जिस तरह से उन्होंने मुझे अपने आप को दिखलाया। प्रचारकों से सीखने के कुछ महीने बाद मैंने बपतिस्मा लिया, मेरा जिंदगी फिर उभर गया। हमारे जीवन जवान सदस्य का आकर्षण और निमुत्ता सोशल मीडिया को लेकर उन्हें निराले मौके देता है सुसमाचार की और दूसरों को लाने में। निफाटियों के पास उधारकर्ता का दिखना को लेकर मॉर्मन लिखा। उसने बच्चों को सिखलाया और उनकी देखरेख की और उनके मुख को खोल दिया कि वे आश्चर्यजनक बातें किए। आज हम शायद कहेंगे उनके टेक्स्ट करने वाले अंगूठे खुले कि वे बतला सके। चल पढ़ो युवा। सुसमाचार को बांटना एक बोझ नहीं पर हर एक आनंद है जिससे हम सदस्य प्रचार करें कहते हैं। कोई कार्यक्रम नहीं पर एक रवाई है प्रेम करने और आसपास के लोगों तक पहुंचाने का। ये एक मौका है देखने का कि कैसा महसूस करते हैं हमारे उधारकर्ता में। जैसे एल्डर बैलर्ड ने सिखलाया है, हमारे संपन्न का सबसे बढ़िया सबूत है और है जब हम सुसमाचार को अपने आप में लगाते हैं और उसे बांटने में। मैं यीशु मसीह की गवाही देता हूँ जो इस दुनिया का रोशनी और जीवन है। उनका पुनर्स्थापित सुसमाचार मरणशीलता में हमारा मार्ग उज्ज्वल करता है। उनका प्रायश्चित हमें जीवन का आश्वासन देता मृत्यु के बाद, और उनका प्रायश्चित हमें मौका देता है हमें हमारे पापों को क्षमा पाने के लिए परमेश्वर का विशाल उद्धार की योजना अनुसार आनंद जीवन पाने का। परमेश्वर के सभी उपहारों में से सबसे महान यीशु मसीह के नाम से आमीन।
Israel, Zion, and Zion. Our beloved Father in heaven.
हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, हम बहुत आभारी हैं कि हमें जो मौका मिला है कि हम साथ मिल सके और जो आपने हमें शिक्षण दी है और जो हमने महसूस किया है हमारे हृदय में हमारे मन में. हम बहुत आभारी हैं हमारे भविष्यवक्ता के लिए जो प्रेसिडेंट थॉमस एस मॉन्सन जो है. आप जानते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और हम बहुत खुश है कि हमें जीवन इस समय हुआ है कि आपके सुसमाचार हमारे साथ है और यीशु मसीह के विषय में जान सकते हैं और उन्होंने जो हमारे लिए बलिदान दिया है. और हम आभारी हैं और सीख सकते हैं प्रॉफिट जोसेफ स्मिथ के विषय में और बुक ऑफ मोमेंट के विषय में. और हम आपकी सहायता चाहते हैं कि हम बदले कि आज और कल कि हम जो सीखे उस पे चले और बदले अपने आप को कि हम दूसरों के विषय में दूसरों से प्रेम करें और उनको खोजे जो बीमार है या जो कोई किसी भी प्रकार की कठिनाई में हो हम उसे खोज सके और उन्हें सहायता दे सके जो हमारे भाई बहन हैं. पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रेम करते हैं और हम ऐसा हो कि हम आपके सामने आकर आपके साथ रह सके और आके जयजयकार कर सके. और ये सब हम आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से कहते हैं, आमीन.
This has been a broadcast of the 186th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. The music for this session was provided by a choir of missionaries from the Missionary Training Center in Provo, Utah. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.